ਨਮੋ ਲੋਈ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਅਰਹੰਤਾਣਮ ਨਮੋ ਲੋਈ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸੀਤਾਣਮ ਨਮੋ ਲੋਈ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਆਹੀਆਣਮ ਨਮੋ ਲੋਈ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਉਚਾਇਣਮ ਨਮੋ ਲੋਈ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾਲ ਵਰਤੀ ਸ਼ਵ ਸ਼ਾਮਣਮ ਓਂਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤਮ ਚੰਦਾਯ ਵਰਤੀ ਯੋਗਿਨਾ ਕਾਮਦਮ ਮੋਕਸ਼ਦਮ ਚੇ ਓਂਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮ ਮੰਗਲਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀਰੋ ਮੰਗਲਂ ਗੋਸ਼ਮੋ ಮಂಗಲಂ ಕುಂತುಂಗ ಆಯುಜಂ ಧರ್ಮೋಶ್ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ ನಮಃ ಸಮಯ ಸಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ ಚಕಾಸ್ತೆ ಹಿ ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಂ ಕರಚ್ಛಿದೆ ಏಗೋ ಮೇ ಸಸದೋಪಾಲ್ ನಾನ್ ದರ್ಶನ ಲಖನು ಶೇಷಾಮಿ ಬಾಹಿರಾ ಭಾವ ಸವೇ ಸಂಯೋಗ ಲಖನ ಮಾರೋ ಸುಶಾಸ್ತೇಕ ದರ್ಶನ ನಾನ್ ದರ್ಶನ ಜಿನ್ ಛೆ બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે હું એક શુદ્ધ સદારૂપ વિજ્ઞાન દર્શનમાંય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરંત ને ગુણદ્રવ્ય ને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને કશું મોહ કામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એ જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ તથા એ જ્ઞાત તે તો છે જેમ નેત્ર તેમ જ્ઞાન નથી કારક નથી નિર્ણય કરે જાણે જે કર્મો દૈવ નિરા બંધ તેમ જ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વી સિદ્ધ ને વંદી કહું શુદ્ધ કેવળી કથી દા સમય પ્રાવરૂ કહો ઓમ શ્રી નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય યે મોના કી શિબિર કા પ્રથમ દિન હૈ ઉસમે જો વિષય દિયા ગયા હૈ वेद ज्ञान कैसे करना और वेद ज्ञान करके अवेद में कैसे जाना। वेद ज्ञान का अर्थ ही यही होता है कि वेद ज्ञान दो चीजों के बीच में होता है, या तो पर से स्व का वेद ज्ञान, कर्म से स्व का वेद ज्ञान, रागादि भाव के स्व का वेद ज्ञान, रागादि भाव को एकांत से लक्ष्य करके जानने वाला इंद्रिय ज्ञान से स्व का वेद ज्ञान, और उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म वेद ज्ञान द्रव्य पर्याय का वेद ज्ञान होता है। वेद ज्ञान के इतने प्रकार शास्त्रों में भी आते हैं और ज्ञानियों द्वारा भी ये सब प्रकार कहे जाते हैं। जो जीव जहां जहां अटकता है, जहां जहां उसकी रुचि चलती रहती है, वहां से उसको वेद ज्ञान करके अपने स्व शुद्ध आत्मा में आना चाहिए, उसी को बोला जाता है वेद ज्ञान का प्रयोग, और वेद ज्ञान का प्रयोग करके अवेद में जाना। ऐसी ये जो वेद ज्ञान की व्यवस्था है उसके लिए जो ये संवर अधिकार की प्रथम तीन गाथाएं है वो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। उसमें आश्रव का निरोध करके संवर की उपलब्धि यानी संवर की प्राप्ति कैसे हुए उसकी पूरी विधि बताई गई है, जो सवेरे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी यही गाथा चलती रहती है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि प्रथम संवर से ही धर्म की उपलब्धि यानी धर्म की शुरुआत हो जाती है, और वो शुद्धि प्रकट होने के बाद शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा बोली जाती है, और वो शुद्धि की जब पूर्णता होती है तो उसको मोक्ष कहा जाता है। ऐसी जो ये वेद ज्ञान की अपूर्व से अपूर्व गाथा है उसमें तीन प्रकार की बातें ये गाथाओं में आई है। एक त्रिकाली द्रव्य बताया है, एक उसका लक्षण उपयोग बताया है, और एक प्रति समय चलता जीव की बहिर्लक्षी पर्याय में जो रागादि क्रोधादि भाव चलते हैं वो बताया गया है। ये तीन को रख के ये पूरी गाथाएं आई है। कर्म नो कर्म तो रागादि भाव कहते हैं तो उसका निमित्त संयोग करके वो आ ही जाते हैं। तो ये पूरी गाथा में एक तो उपयोग, एक उपयोगवान और राजादि भाव, ये तीन बात की चर्चा बहुत अच्छी तरह से की गई है। ये तीनों जो चीज है वो सभी जीवों के पास, अज्ञानिक जीवों के पास भी त्रिकाली द्रव्य भी मौजूद होता है, एक ज्ञान का सर्वोत्तम भाव भी निरंतर रहता है और एक रागादि भाव की उसकी औदयिक भाव रूप चलता रहता है। तो ये तीनों स्थिति बता के ये गाथा में भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है। गाथा में एक वस्तु भी दूसरी वस्तु की नहीं है। अभी जो राकेश जी ने बहुत अच्छी बात है वो गाथा के लिए ली, इसमें बहुत सारी बातें हैं। आश्रव और समर के प्रदेश कैसे भिन्न होते हैं, आश्रव और त्रिकाली द्रव्य के भिन्न प्रदेश कैसे होते हैं, जितने प्रदेश में से आश्रव की उत्पत्ति होती है वो प्रदेश को त्रिकाली द्रव्य के प्रदेश से कैसे भिन्न किया गया है और कहा जाता है, और प्रदेश को भिन्न कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि प्रदेश तो असंख्य प्रदेश होते हैं, तो रागादि भाव चलते हैं तब तक वो प्रदेश को पृथक कहा जाता है, और संवर की प्रकटता होती है तो प्रदेश तो निकलते नहीं है, प्रदेश तो रह जाते हैं मगर वो भाव पलट जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें ये गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण किया है कि ये गाथा का भाव अगर पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण नहीं किया होता तो अपन तो उसको एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तो स्व की वस्तु पर नहीं है उतना ही सीमित करके भेद ज्ञान की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अभी पूज्य गुरुदेव श्री ने एक वस्तु की दूसरी वस्तु में मात्र रागादि भाव से ही भेद ज्ञान करने का इसमें संबोधन किया, तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया में स्थूल भेद ज्ञान भी होता है, सूक्ष्म भेद ज्ञान भी होता है और अति सूक्ष्म भेद ज्ञान भी चलता रहता है। स्थूल भेद ज्ञान तो पर पदार्थ और कर्म नव कर्म का चलता है, सूक्ष्म भेद ज्ञान रागादि भाव का चलता है और अति सूक्ष्म भेद ज्ञान द्रव्य पर्याय के बीच का चलता है। ऐसी जो ये उपयोग में उपयोग है, ये जो गाथा है ये बहुत अलौकिक गाथा है, और ये गाथा में सभी जीव की प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। माने कि अभी तक जो वेश चला आता था वो वेश आश्रव का वेश, कुलपाप का वेश निकलकर अभी संवर का वेश में जीव प्रवेश करता है, तो वो प्रवेश उसका अंदर संवर में कैसे हो जाए और संवर होके आत्मद्रव्य की प्राप्ति उसको कैसे हो जाए, इसकी पूरी विधि इस गाथा में अपूर्व तरीके से बताई गई है। गाथा पहले पढ़ते हैं अपन, इसमें गुजराती में है, गुजराती में बोलते हैं। उपयोग उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि मां, क्रोध क्रोध मही जनिषय, क्रोध नहीं उपयोग मां, उपयोग से नहीं आचरित कर्मो जारी उपवेक्षे जी श्रीमद राजचंद्र जी जो आत्मज्ञानी हो गए उसने एक ऐसी बात फरमाई है कि द्रव्यानुयोग जो है वो अति सूक्ष्म और गंभीर है और सचमुच में द्रव्यानुयोग में प्रवेश तो सम्यक दृष्टि का ही होता है, मगर ये समयसार की गाथा होता ऐसा स्पष्टीकरण तुझे गुरुदेव श्री ने किया कि कोई भी गाथा हो उसमें एकदम गहनता से अपना ज्ञान को रख के उसका ऐसा स्पष्टीकरण किया कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव क्षण मात्र में त्वरित में सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए, इसका महापारमार्थिक उपदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को दिया। द्रव्यानुयोग सूक्ष्म और गंभीर होते हुए भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम का सारभूत उसमें अध्यात्म निकाल के अपनी सरल शैली में एकदम सरल भाषा में मूल अध्यात्म को इतना सरलतम बना दिया कि कोई भी जीव उसकी वाणी सुनने को बैठे तो एक ही प्रवचन में उसको ऐसा लग जाए कि ये महापुरुष की वाणी जो तीर्थंकर वत दिव्य देशना देती है, ऐसी जो पूज्य गुरुदेव जी की ये गाथाओं का मर्म खोलने की जो पद्धति है और उसको एकदम सरलतम करके जीवों के हाथ में देने की जो उसकी प्रथा है, वो अपन सुनते ही रह जाए तो अपने को ऐसा लगे कि ये सुनते ही रहे। ऐसे ये जो गाथा अभी सवेरे चली, ये प्रवचन यहाँ चला, वो मैं तो यहाँ नहीं था मगर मैंने आते समय वो प्रवचन सुन लिया था, तो ये इसमें इतनी बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है एक प्रवचन में कि सचमुच एक प्रवचन अपन उसका अक्षर पढ़ के अगर अपन सोचे ने तो एक महीने से एक प्रवचन चले, इतनी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने इन गाथाओं की की है। अभी ऐसा जो ये सवर अधिकार है कि धर्म की उपलब्धि का अधिकार है, आश्रम का निरोध पूर्वक सवर की उपलब्धि होती है, उसकी टीका है। वो टीका में ऐसा कहना चाहते हैं कि वास्तव में यानी निश्चय से यानी सचमुच एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। मान कि कोई एक वस्तु होती है तो दूसरी वस्तु उसकी कभी नहीं हो सकती है। माने कि त्रिकाली द्रव्य जो है अपना शुद्ध आत्मा है, अविनश्वर परमात्मा है, वो शाश्वत परमात्मा है, अनादि अनंत चैतन्य तत्व है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी अखंड अनादि अनंत जो वस्तु मैत्री मेरी अनंत भाव से भरी हुई है, वो जो वस्तु है वो वस्तु की दूसरी वस्तु कोई नहीं है। वो एक शाश्वत वस्तु है, वो एक अभेद अखंड वस्तु मात्र है, अपरिणामी वस्तु है, वो वस्तु की दूसरी कोई वस्तु नहीं होती। कर्म उसके नहीं होते, नौ कर्म उसके नहीं होते, रागादि भाव उसके नहीं होते, एक समय का बहिर्गत इंद्रिय नाम उसका नहीं होता, और वास्तव में उत्पाद ये जो होते हैं उससे भी ध्रुव पृथक है। ऐसी मेरी जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ रहती है, वो वस्तु कहाँ से मेरे को मिले, और वो वस्तु की प्राप्ति करने के लिए मैं उसको कहाँ ढूंढू तो मुझे मिल जाए। वो इसकी चर्चा ही गाथा में आई है कि उपयोग में उपयोग है। उपयोग में माने कि उपयोग में उपयोग है, तो उपयोग में वो उसका लक्षण है और उसमें उपयोग है, वो उपयोग है वो लक्षभूत पदार्थ है। तो उपयोग जो है वो त्रिकाली द्रव्य है, और जो उपयोग में लिखा है वो उसका ज्ञान लक्षण है। कोई भी पदार्थ अपने लक्षण को छोड़ के कहीं बाहर नहीं ले सकता है। सभी पदार्थ, जो पदार्थ को लक्ष्य बोला जाता है, वो लक्ष्यभूत पदार्थ, वो शाश्वत परमात्मा, वो अखंड आत्मा, अभेद आत्मा, अपरिणामी आत्मा, वो अपने लक्षण में ही रहता है। और वो लक्षण चैतन्य को बोला जाता है, ज्ञान को बोला जाता है, ज्ञान उपयोग को बोला जाता है। वो जो ज्ञान उपयोग है, वो ज्ञान उपयोग भी अनादि अनंत रहता है। एक उपयोग त्रिकाली द्रव्य है, वो ध्येय बोला जाता है उसको, और जो उसका लक्षण होता है वो लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित ज्ञान नाम का लक्षण है। वो लक्षण सभी पर्यायों में विद्यमान रहता है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल जो है उसको लक्षण नहीं बोला जाता, लक्षण ज्ञान को बोला जाता है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग है, वो निरंतर रहता है और वही उपयोग में आत्मा बसा हुआ है। आत्मा को उपयोग में प्रतिष्ठित करना नहीं है, वो उपयोग में प्रतिष्ठित है ही। उसको बोला जाता है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, माने कि उपयोग में उपयोग है, ज्ञान में आत्मा है, शाश्वत पदार्थ अपना लक्षण में रहता है, अपना लक्षण के बाहर उसको ढूंढते है तो वो कहीं रहता ही नहीं, इसलिए वो मिलता ही नहीं उधर। तो ऐसा कहना चाहते हैं कि उपयोग में उपयोग है, जानन क्रिया में आत्मा है, माने कि होना है उसका, होनापना उसका कायम रहता है। उपयोग होवे और उसमें उपयोगवान नहीं होवे ऐसा कभी नहीं होता, और उपयोगवान होवे और उसका लक्षण प्रकट नहीं होवे ऐसा भी कभी नहीं होता। और लक्षण है, वो लक्षण प्रति समय अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध करता ही रहता है। वो लक्षण अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है, उसको बोला जाता है उसका लक्षण। जो लक्षण अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध न करे, माने कि जो ज्ञान अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध न करे, उसको लक्षण बोला नहीं जाता। जो ज्ञान अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, उसको ही सचमुच में लक्षण बोला जाता है। तो ये लक्षण की चर्चा और ये लक्ष्य की चर्चा यहाँ ये गाथा में छिपी हुई है, माने कि लक्षण लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं और लक्ष्य कभी लक्षण के बिना होता नहीं। तो ये लक्षण और लक्ष्य उसकी अभिन्नता है, उसकी कथनचित अनन्यता है, उसकी एक रूपता है। वो लक्षण है ना, वो लक्षण लक्ष्य में से बहता है, वो ध्रुव प्रवाह जो अंदर में ध्रुव में चलता है ना, त्रिकाली द्रव्य जो है वो ध्रुव है, वो शाश्वत है, वो अनादि अनंत अखंड है, उसमें चैतन्य तत्व मौजूद है। तो वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक उसको बोला, तो निष्क्रिय माने उसमें क्रियाएं पर्याय की नहीं है, मगर क्रियाएं पर्याय की निष्क्रिय तत्व में नहीं है, इसलिए उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें निरंतर ध्रुव का, चैतन्य का, नूर का पूर बहता 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 झानना देखना चलता रहता है। उसके अंदर जहाँ ज्ञान होता है त्रिकाल, जहाँ दर्शन होता है त्रिकाल, वहाँ जानना और देखना निरंतर क्रिया के बिना निष्क्रिय बने चलता है।
ऐसा एक जो स्वयं परमात्मा है, ऐसा एक जो त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव से लक्षित सहज चैतन्य देव है, वो त्रिकाली परमात्मा को यहाँ उपयोग बोला है। उपयोग बोलो कि उपयोगवान बोलो, वो एकार्थ है, वो त्रिकाली द्रव्य बोला जाता है उसको। अपरिणामी तत्व है वो, ध्रुव तत्व है, शाश्वत तत्व है, अखंड तत्व है, एक रूप तत्व है, वस्तु मात्र है। उसको विशेषण से भी नहीं देखना, वस्तु मात्र देखो उसको। किसी का नास्ति वाली अस्थि ध्रुव की नहीं होती, परिणाम नहीं है ऐसा अपरिणामी तत्व नहीं है, भेद नहीं है ऐसा अभेद तत्व नहीं है, अनित्य नहीं है ऐसा नित्य तत्व नहीं है। ये तो शाश्वत वस्तु, वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र है। उसको वस्तु मात्र से देखो, यहाँ लिखा है एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, उसको वस्तु बोला है। वस्तु, वस्तु मात्र आत्मा है। ज्ञान दर्शन अनाज, ज्ञान दर्शन अनंत गुण से भरा हुआ है वो चैतन्य देव है, वो मैं हूँ। और वो देव चैतन्य परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, अनादि अनंत अखंडित परमात्मा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी खंड उससे नहीं, ऐसा अखंडित परमात्मा जो मैं हूँ, वो मैं त्रिकाली द्रव्य मेरा लक्षण रूप उपयोग में सदा ही बसता रहता हूँ। उसको बोला जाता है कि उपयोग में उपयोग है, और उपयोग में क्रोधादि भाव नहीं है। अस्ति नास्ति से बताया इसने कि उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है, रागादि भाव क्रोधादि भाव जीव का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है लक्षण उसका, और उपयोग को लक्षण क्यों बोला है? क्योंकि रागवादी भाव में आकुरता होती है, रागादी भाव निकल जाते हैं, रागादी भाव पर के लक्ष्य होते हैं, और उपयोग है वो अनादि अनंत अपने आत्मा से जुड़ा हुआ ही रहता है, इसलिए उसको लक्षण बोला जाता है। और वो लक्षण में निरंतर लक्ष्य प्रसिद्ध है ही, वो जीव उसका स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए रागादि भाव की उत्पत्ति होती रहती है। इसमें पहले ही लिखा है कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि भाव नहीं है। वो क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये उपयोग में उपयोग है, उसका स्वीकार नहीं करता है तो उसको क्रोधादि भाव दिखता है, इसलिए उसको नास्ति से भी बोला कि क्रोधादि भाव इसमें नहीं है, उपयोग में उपयोग ही है। ऐसा तू त्वरित स्वीकार कर ले, तेरा लक्षण कभी लक्ष्य को उसने छोड़ा नहीं है। और ये लक्ष्य लक्षण का जब तक भेद चलता है तब तक क्रोधादि भाव की उत्पत्ति होती रहती है। जब तू उसको अनन्य देखेगा, जब जाननहार ही जानने में आता ऐसा देखेगा, जब ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित ऐसा देखेगा, जब मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान में आएगा, ऐसा प्रतीति में आएगा, तो वहाँ लक्षण लक्ष्य की अभेदता होके वहाँ रागादि क्रोधादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ऐसा इसमें महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हो कि उपयोग सदा निरंतर, जो उपयोग है, जो उसका लक्षण है, वो लक्षण निरंतर लक्ष्य को प्रसिद्ध करता ही रहता है। 17-18 गाथा में भी जो लक्षण लक्ष्य वाली चर्चा आई है, 69-70 गाथा में भी ज्ञान क्रिया की बात आई है, 8वें कलश में भी चेतना लक्षण की बात आई है, 42वें कलश में भी चैतन्य लक्षण बोला है आत्मा का। ये सब शास्त्रों का मर्म जो है वो लक्षण लक्ष्य से सिद्ध होता है। लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, और लक्ष्य कभी लक्षण के बिना होता नहीं है। आत्मा की बॉर्डर लाइन और मर्यादा लक्षण तक ही है, उसके बाहर आत्मा रहता ही नहीं कभी कहीं। एक लक्ष्य बुद्ध है वो आत्मा है, और एक उसका ज्ञान है, वो लक्षण है। वो लक्षण में लक्ष प्रतिष्ठित है, लक्ष्मण में लक्ष विराजमान है, लक्षण में लक्ष रहता है, लक्षण में लक्ष जानने में आ ही रहा है, इतना स्वीकार में ही समर हो जाता है। उसी को बोला जाता है कि इसने क्रोधादि भाव को दूर कर दिया, उसी को बोला जाता है कि इसको आश्रव की उत्पत्ति नहीं हुई, आश्रव भाव का निरोध करके समर की प्रगटता हो गई। ये सब उपयोग में उसमें छिपा हुआ है। जब तक उपयोग में वो भेद रूप चलता है, तब तक रागादि भाव चलता रहता है, क्रोधादि भाव चलता रहता है, और उपयोग में उपयोग ऐसा भी बड़ा उसके ख्याल में आ जाता है, तो वहां वितरागता का जन्म हो जाता है। इतनी गंभीर और सरलता से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात को कही है कि सदाए उपयोग में उपयोगवान विराजमान रहता ही है। तुझे उपयोग को कहीं दूर चला गया है और वहां से लाके उपयोगवान में ले जाना, ऐसा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है तुझे। जिसको लक्षण बोला जाए, जिसको तेरा ज्ञान बोला जाए, जिसको उपयोग बोला जाए, वो उपयोग कहीं बाहर जाता ही नहीं, वो उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं, तेरी नजर पहुंचती नहीं होगा। ये काम है ना, नजर का है, किसको दूर करना, किसको वहां से लाना, उपयोग बाहर चला गया है, उपयोग को अंदर लाना है, ये सब बातें भी आती है ज्ञानियों के वचन में, शास्त्रों में भी। उपदेश बोध अलग होता है, सिद्धांत बोध अलग होता है। अपन जो भी चर्चा करे उसमें आचार्य भगवान ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उसका स्पष्टीकरण किया, उसमें जो उसने सिद्धांतिक बात कह के अपन जहां खड़े हैं, अपन जहां सचमुच से रहते हैं, वहां उसको अपने को ले जाना, क्योंकि अपन रहते हैं अपने ज्ञान में, आत्मा रहता है अपना उपयोग में, उपयोग के बाहर आत्मा है ही नहीं कहीं पे। अभी ढूंढना है तो वहां ही उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर उसको आत्मा चाहिए तो पहले उपयोग को समझना पड़ेगा, पहले लक्षण को पकड़ना होगा, लक्षण का ख्याल करना होगा। इतनी परिधि की मर्यादा में आके ही विचार धारा चलनी चाहिए, तभी ये उपयोग में उपयोगवान है वो बैठ जाएगा, और बैठ गया वो तो वहां निर्जरा संवर पूर्वक निर्जरा ही होती रहेगी। जितना इसमें भेद चलता है कि उपयोग में उपयोग है कि मैं उपयोगवान हूं, उपयोग में उपयोग है, जानन क्रिया में जाननहार है कि मैं जाननहार हूं, बस प्रक्रिया इतनी ही है। लंबी प्रक्रिया कोई है नहीं सचमुच में अध्यात्म में। आगम में सब बातें आती है, मगर पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम का सार भूत अध्यात्म निकाल के अपनी हथेली में रख दिया कि तू जहां है, तू जिधर है, उधर से तेरे को देख। अभी उपयोग समझो तो त्रिकाली द्रव्य, उपयोगवान समझो तो त्रिकाली द्रव्य है, और वो कौन सी जगह है तो बोले वो अपने उपयोग में है। तो एक ध्रुव भाव और एक उत्पादने वाला भाव, वो दोनों आ गया। उसी को सचमुच में उत्पादी ध्रुवोत्तम सत बोला जाता है, और ऐसा उत्पाद में ऐसा अपना ध्रुव ऐसा है, यानी कि मैं ध्रुव परमात्मा हूं, तो वो रागादि भाव क्रोधादि भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, उसको दूर नहीं करना पड़ता। ज्योतिषी गाथा में ये बात आई है, जब ज्ञान ज्ञान में मिल जाता है, ज्ञान ज्ञान रूप हो जाता है, तो रागादि भावों की उत्पत्ति भी नहीं होती। उसको बोला जाता है इसने रागादि भाव को दूर कर दिया। ऐसा यहाँ ये गाथा में मार्मिक बात कहना चाहते हैं कि उपयोग तेरे पास है, लक्षण तेरा प्रगट रूप लक्षण मौजूद है, उत्पाद रूप लक्षण मौजूद है। तेरे पास दो चीज है, एक लक्षण उत्पाद रूप प्रगट 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 है, और लक्ष्य है वो प्रगट की अपेक्षा प्रगट है, मगर उसकी अपेक्षा वो भी प्रगट है। ऐसा अपना लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रगट है, और दोनों प्रगट है वो लक्षण में लक्ष्य प्रतिष्ठित है, वो लक्ष्य विराजमान है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य उसका प्रकाश होता है प्रकाश, तो कौन सा समय ऐसा होगा कि सूर्य होगा और प्रकाश नहीं होगा, और कौन सा समय ऐसा होगा कि प्रकाश होगा तब सूर्य नहीं होगा। तो ये लक्षण और लक्ष्य है, उसकी अनन्यता से सोचा जाए तो ये मेरी पर्याय में राजा भी चलते रहते हैं, मेरी पर्याय प्रसन्न हो गई है, मेरी पर्याय में अभी विभाव रूप बहुत प्रक्रियाएं चल रही है, ये सब बहिर्मुख दृष्टि से देखने वाले को दिखता भी है। और ऐसा राजा भी भाव जब तक ये विषय इस तरीके से ख्याल में न आवे तब तक चलता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि पर्याय में राग है, ऐसा है ऐसा नहीं है कि पर्याय में से राग चला गया है, मगर जो ज्ञान लक्षण को समझने की प्रयत्न करता है, ज्ञान लक्षण को समझने के लिए उसमें तत्पर होने की चेष्टा करता है, उसको वो लक्षण में लक्ष्य विराजमान दिखाई देता है। इसलिए स्वभावभूत रचना इस दशा में आई है, उपयोग ने कभी अपने उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं। जिसको अपन ज्ञायक बोले, जिसको अपन अपरिणामी तत्व बोले, शाश्वत ध्रुव तत्व बोले, तो उसका लक्षण तो प्रगट ही होवे, और जिसको अपन लक्षण बोले तो ये लक्षण कभी लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। एक लक्षण होता है ध्रुव लक्षण, नित्य तालात्म लक्षण होता है, और एक अनित्य तादात्म लक्षण होता है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं। अपने गुण और अपनी कारण सूत पर्याय को अपन देखें ज्ञान दर्शन की त्रिकाल को, तो उसको नित्य तादात्म लक्षण बोला जाता है, और अपने उत्पाद वाले ज्ञान उपयोग को देखें तो उसको अनित्य तादात्म लक्षण बोला जाता है। ये दोनों लक्षण मेरे है, मेरे में चल रहे हैं, कोई दूसरे का लक्षण नहीं है। मेरा आत्मा लक्ष्य है तो मेरा लक्षण या तो नित्य है, और नित्य लक्षण से भी मैं थोड़ा दूर जाऊं तो अनित्य लक्षण भी मेरा ही है, और नित्य लक्षण में तो तादात्म रूप से आत्मा है, और अनित्य लक्षण में भी अनन्यपणे कथनचित रहता है आत्मा, अनन्यपणे कथनचित रहता है, वहां से वो छूटता ही नहीं, कभी कभी उपयोग ने छोड़ा ही नहीं उपयोगवान को। ध्रुव उपयोग ने भी अपने त्रिकाली शाश्वत द्रव्य को नहीं छोड़ा, वो ध्रुव उपयोग में त्रिकाली द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय, ऐसा अंदर में पूरा वैभव भरा है, मैं वैभववान हूं, और वो वैभव का वान का जानना भी उसमें निरंतर निष्क्रिय को नहीं चलता है। ऐसी बात नियम सार के प्रवचनों में बहुत आई है, 320 गाथा में भी आई है, और वहां से ही वो त्रिकाली ध्रुव लक्षण है अंदर में, वहां से ही ध्रुव प्रवाह बहता 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 वर्तमान उपयोग तक चलता रहता है, और वो वर्तमान उपयोग में अनित्य तादात्म उपयोगवान का होने से वो ज्ञान क्रिया में आत्मा निरंतर प्रतिष्ठित है, छूटा नहीं उपयोग वहां से कभी। ये बात पहले समझ में आ जाए फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि ये मूल बात है, इसमें मर्म है, इसमें अनुभव की विधि छुपी हुई है पूरी। संवर की गाथा है ये, संवर की। संवर कैसे हो गए, आचार्य भगवान ने पहले ही लिख दिया कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादी नहीं है, वो तो बाद में लिखा है। पहले तो इतना सोच कि उपयोग में क्या है, ज्ञान में आत्मा है, परिणाम में अपरिणामी है, भेद में अभेद है, शाश्वत वस्तु ऐसी न ऐसी पड़ी है, मगर वो उसके ही भेद में रहती है, उसके ही परिणाम में रहती है, और वो परिणाम मैं अपरिणामी हूं ऐसा परिणामी होके उसके तरफ जाता है। जो वो परिणाम है वो मैं अपरिणामी हूं ऐसा परिणामी बन के उसको लक्ष्य करके जाता है। वस्तु स्थिति में तो उपयोग में उपयोग है ही, ऐसा स्वीकार में परिणामी हो जाता है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है। इसमें लिखा है पीछे कि जानन क्रिया में आत्मा है, स्वभाव क्रिया में आत्मा है, स्वरूप में आत्मा प्रतिष्ठित है, ज्ञान में आत्मा विद्यमान है। वो प्रकाश की बात नहीं है, प्रकाश की, अभी प्रकाश को दिखता है सबको, लक्षण है ना, लक्षण। सूर्य का प्रकाश को क्या बोला जाता है, लक्षण बोला जाता है। तो अभी तो प्रकाश यहाँ है, लाइट नहीं है यहाँ पे, मगर सूर्य का प्रकाश को अभी चलता है ना, देखो यहाँ अंधेरा है, प्रकाश को है उधर, अभी प्रकाश है मगर यहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य यहाँ नहीं है मगर प्रकाश तो है, लक्षण प्रकट है, लक्षण की मौजूदगी है। वो लक्षण के पता, लक्षण से पता चलता है कि सूर्य की अस्थि उधर है, अभी सूर्य डूब नहीं गया है। ये लक्षण से लक्ष पकड़ जाता है, लक्षण ने लक्ष को छोड़ा नहीं है, प्रकाश ने सूर्य को छोड़ा नहीं है, ऐसे ज्ञान ने आत्मा को कभी छोड़ा नहीं है। ऐसा उपयोग में उपयोग है, यानी कि मैं उपयोगवान हूं। लेकिन कहीं कहते हैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव अखंड तत्व हूं, मैं अनादि अनंत पदार्थ हूं, ऐसी मेरी अस्थि है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसी मेरी हयाती है, ऐसी मेरी मौजूदगी है, ऐसा मेरा शाश्वतपना है। नियम चार में लिखा तीसरी गाथा में कि नियम से करने लायक होवे तो सम्यक दर्शन दान चारित्र शुद्ध रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग नियम से जीव को करने योग्य है। ऐसा कुंभ आचार्य ने लिखा तीसरी गाथा कि जीव को करने लायक हो तो शुद्ध रत्न त्रय का परिणाम करने लायक है, व्यवहार नहीं का परिहार अर्थे सार पद योजन छे। ऐसी गाथा लिख के उसने तीसरी गाथा में लिखा कि नियम से करने लायक हो तो रत्न त्रय का परिणाम करने लायक है, और प्रकट करने के लिए वो उपाधि है, ऐसा लिखा। प्रकट करने के लिए उपाधि बोला उसको, वही पर्याय को सुनभाव अधिकार ने पर द्रव्य पर स्वभाव और ही बोल दिया। एक जगह लिखते आचार्य हुई है कि प्रकट करने के लिए उपाधि है, और वहां बोलते हैं कि वो पर स्वभाव पर द्रव्य और हे साई भाव को हे ही बोला, पर स्वभाव बोला। प्रकट करने की अपेक्षा अलग है और ध्रुव की अपेक्षा अलग है, इस तरीके से उसको समझना चाहिए। अभी वहां आचार्य भगवान ने वो लिखा प्रकट करने के लिए वो उपाधि है, तो पद्म प्रभ मलधारी देव जो भावी तीर्थाधिनाथ है, वो भावी तीर्थंकर होने वाले ऐसा 212 कलश में लिखा उसने, उसने उसमें से उसका कारण निकाला। कुंकुद आचार्य भगवान ने कार्य की बात की और पद्म प्रभ मलधारी देव ने ऐसा लिखा कि कार्य तेरा आएगा, तो कार्य तो कारण के बिना कभी आता ही नहीं है। वो पंडित जी ने बोला था ना, तेरे कारण अनुदायी कार्य नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं होता, और कार्य आता है तो कारण अवश्य होता है। तो उसने निकाला पद्म मल्लारी देव ने वहां से कि नियम से करने योग रत्न त्रय तो है, मगर जो सहज सदा परम पारिणामी भाव स्थित उसको बोला द्रव्य, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक उसको बोला गुण, और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम उसको बोला कारण पर्याय। वो कारण नियम है, ऐसा कारण नियम की गूंथनी अंदर में तेरे ध्रुव स्वभाव में है, उसको कारण बना तो कार्य आएगा, ऐसा लिखा उसने। जो सहज सदा परम पारिणामिक भाव स्थित ठीक स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वही कारण है, फिर कार्य की बात करी उसने। कार्य से पहले कारण की मौजूदगी होनी चाहिए तभी कार्य प्रकट होता है। तो कारण परमात्मा में कारणपणा, भगवान आत्मा में उपयोगवान में कार्य होने का अंदर में मौजूद पड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है उपयोगवान। और वो उपयोगवान उपयोग में प्रतिष्ठित है, ऐसी समझ हो जाए, ऐसा अहम हो जाए, ऐसा ज्ञायक भाव ख्याल में आ जाए तो वो सचमुच में कार्य की प्रगटता सहज में हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवान उपयोग में उपयोग है ये यहाँ कहना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, ये उपयोग में उपयोग है, उसमें पूरा मर्म है जीनागम का, लक्षण लक्ष में पूरा आगमों का अध्यात्म सार है। इसको समझ के सभी मोक्षार्थी और भवी जीव अपनी निज निधि को प्रकट करें। ऐसी मंगल भाव
Amen.